समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें आपके लिए हम लेकर आए हैं तमाम खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और कार्यक्रम के अंत में उन विशिष्ट लोगों को हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के संक में मैं हूं निखिल, मेरे साथ में है अभिषेक मुखोपाध्याय। स्वागत है अभिषेक आपका भी।
हेलो निखिल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM. आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट निखिल, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी हां,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू द नेशन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा, दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान की आवश्यकता है।
बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिज्यूम नॉर्मल बिजनेस आफ्टर एंड ऑफ 5-डे डेडलॉक।
केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की।
एंड इंडियाज पवन कंपेली सिक्योर्स फर्स्ट एवर मेडल इन ई फुटबॉल इवेंट एट द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स इन बैंकॉक थाईलैंड। And now, Nikhil, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Persons with Disabilities. That is 3rd of December, that is today. So, Nikhil, let's start with these inspiring words by Stephen Hawking, who said, "My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically." Well, great inspiring words there, isn't it, Nikhil?
Joy Riemann ने कहा है, मैंने जो सीखा वो ये था कि एथलीट दिव्यांग नहीं थे, वे अत्यधिक सक्षम थे। ओलंपिक वो जगह है जहां नायक बनते हैं और पैरालंपिक वो जगह है जहां नायक आते हैं।
Absolutely, and the International Day of Persons with Disabilities, observed annually on December 3rd, that is today, is a global initiative to promote awareness and inclusivity for people with disabilities. Established by the United Nations in 1992, this day seeks to foster understanding, promote empowerment, and ensure the rights of individuals with disabilities. This day also seeks to increase awareness of gains to be derived from the integration of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic, and cultural life.
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस का विषय है, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग लोगों के नेतृत्व को बढ़ाना। दिव्यांगता के प्रकार देखने, सुनने, बोलने, चलने फिरने, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी या इससे भी अधिक हो सकते हैं।
Despite progressive legislation all over the world, individuals with disabilities face several barriers. Some challenges faced by the persons with disabilities include social stigma. Deep-rooted stereotypes and discrimination hinder their inclusion in society. Limited accessibility, inadequate infrastructure and transport facilities make mobility difficult. Lack of vocational training and employer awareness limits job prospects. And many educational institutions are not equipped with resources to support disabled students.
आपको श्रोताओं बताएं कि दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया से ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाने का आह्वान करता है कि दिव्यांग लोगों को नेतृत्व करने और सामाजिक प्रगति में योगदान करने के लिए समान अवसर दिए जाएं।
Yes, absolutely, Nikhil, and probably one of the best inspirations we can draw is from Louis Braille, who did not surrender in front of his disability, but rather found a solution which not only helped him, but many more who came after him. He invented a reading and writing system for the visually impaired people. This tactile system is known after him as the Braille language. And Louis Braille was blinded in one eye at the age of 3 as a result of an accident. Later, an infection set in and spread to both eyes, resulting in total blindness. And Braille began developing his touch-based coat when he was still a student. He received a scholarship from the Royal Institute for Blind Youth and Braille first presented his system of code in 1824.
आप सभी ने स्टीफन हॉकिंग का नाम जरूर सुना होगा. वे एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, खगोल भौतिकी विद, ब्रह्मांड विज्ञानी और प्रख्यात वैज्ञानिक थे. स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र में ALS का पता चला था और उन्हें जीने के लिए सिर्फ 2 साल के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना शेष जीवन 55 वर्ष तक जिया और सिर से लेकर पांव तक लकवा ग्रस्त होकर के जिया. उन्होंने संवाद करने के लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर और आने जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया, जिसे वो अपनी सिर और आंखों की हल्की हरकतों के माध्यम से संचालित करते थे. इनमें से भी किसी ने भी उन्हें एक अनुकरणीय शोधकर्ता और प्रोफेसर के रूप में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने से नहीं रोका और एक गहन व्यक्तिगत जीवन ने उन्हें अपनी बीमारी को दुनिया के सामने लाने की अनुमति दी. हमारे समय की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली हस्तियों में से एक बनने के बाद उनकी कहानी को फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के माध्यम से सिनेमाघरों में ले जाया गया. हॉकिंग का जन्म 14 मार्च 2000, आपको बता दें कि हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हो गया था. भारत में भी ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है. अगर उनमें मैं कुछ लोगों का नाम लूं तो अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं. एक भयानक ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी खोने नहीं दिया. अरुणिमा ने हार मानने से इनकार किया और कड़ी मेहनत की और फिर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपना नाम बनाया. उनकी कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प दिव्यांगता को महानता की राह में बदल सकता है. हाँ, दाएं पैर की मदद से उन्होंने जिंदगी में एक ऐसा काम किया जो 2 पैरों वाले लोगों के लिए भी शायद करना मुश्किल हो. माउंट एवरेस्ट ने कभी नहीं कहा कि तुम बिना पैरों के मुझ तक नहीं पहुंच सकते. उसने तो बस ये कहा कि तुम्हारे पास आशा होनी चाहिए और यही अरुणिमा ने कर दिखाया. उनकी उम्मीद के आगे माउंट एवरेस्ट भी छोटा नजर आया.
Yes, absolutely. Nikhil and Helen Keller is also one of the best known icon of persons with disabilities. She became a deaf blind at the age of 19 months due to an unknown illness. Helen was taught to express herself by Anne Sullivan, her teacher, who remained a lifelong companion. Helen Keller went on to become the first graduate with deaf blindness in the world. Autobiography of Helen Keller, The Story of My Life, is considered a classic book in English literature. She traveled around the world and campaigned for anti-militarism, women's suffrage, labor rights, socialism, and other similar causes. And Helen Keller is most certainly one of the most famous disabled persons in the world.
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक निर्णायक क्षण 2015 में आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए दिव्यांगजन शब्द की शुरुआत की. ये शब्द, जिसका अर्थ है दिव्य क्षमताओं वाले व्यक्ति, के परिप्रेक्ष्य में एक गहन बदलाव को दर्शाता है. दिव्यांगता को एक सीमा के रूप में देखने से कहीं आगे जाकर के इसे एक अद्वितीय क्षमता के रूप में स्वीकार करना, जो समाज में कई मूल्यों को जोड़ता है. यह पहल सिर्फ शब्दों में बदलाव नहीं थी, बल्कि दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को एक नया आकार देने की सरकार की कोशिश थी और सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में एक शक्तिशाली बयान भी था.
एब्सोल्युटली, एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एंपावरिंग दिव्यांगजन एंड एंश्योरिंग द इंटीग्रेशन इनटू एवरी aspect of society. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, which was established in 2012 and later renamed in 2014, has been central to coordinating efforts across ministries, states and NGOs to create a more inclusive environment. Dindal Divyangjan Rehabilitation Scheme, DDRS, this initiative supports NGOs working on projects that help PWDs to achieve their maximum potential through rehabilitation and social inclusion efforts and district disability rehabilitation centers. These centers focus on early identification and intervention while also providing essential assistive devices and loans for self-employment.
और श्रोताओं, आपको हम बता दें कि पीएम दक्ष योजना एक ऐसी योजना है जो कौशल प्रशिक्षण मंच बन करके दिव्यांगों को देश भर में रोजगार के अवसरों तक ले जाता है, जिससे नौकरी की चाह रखने वालों और नियोक्ताओं के बीच अंतर को पाटने में काफी मदद मिली है. इसके अलावा दिव्य कला मेला दिव्यांगजन कारीगरों के योगदान का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है. ये इन व्यक्तियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने और विपरीत परिस्थितियों में अपने कौशल तथा प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है।
Yes, and so to close our discussion today here, Nikhil, I'd like to leave listeners with the famous words by Robert M. Hensel, who very famously said, "I choose not to place this in my ability."
और वही हेलेन केलर ने कहा है कि आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।
Yes, and moving on, President Draupadi Murmu today conferred the National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities to 33 exemplary individuals and institutions on the International Day of Persons with Disabilities 2024 in New Delhi. The theme of this year's International Day of Persons with Disabilities is amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. We have a report.
In her address, President Draupadi Murmu said that promoting entrepreneurship among disabled people, developing their skills, providing them with employment, offering preference in purchasing their products, and providing marketing facilities will enhance their leadership capabilities. She said today's award winners are being recognized as role models in front of the society. She added that by emulating them, other individuals and institutions can move forward towards empowerment of the Divyangjans.
आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा।
President Murmu highlighted the role of Sugamya Bharat Abhiyan in providing universal accessibility to persons with disabilities, reminding everyone that people with disabilities need empathy, not sympathy. She said providing barrier-free environment to Dibyangs in every way should be the priority of the society.
Prati varsh antarashtriya Dibyangjan Divas ka ayojan karana manav samudaya mein samvedanshilta ka praman hai. Vishwa samudaya mein apni Dibyang sathiyon ke sashaktikaran ki bhavana ka hona bahut achhi baat hai. Is bhavana ke saath sabhi Dibyangjan ko sahajata aur barabari ka anubhav karna पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण स्वरूप कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।
स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अंडरलाइन्ड दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एम्पावर दिव्यांगजन्स। द मिनिस्टर अनवील्ड 16 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दीज इनिशिएटिव्स स्पैन इंक्लूसिविटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रीइन्फोर्सिंग द डिपार्टमेंट्स कमिटमेंट टू एम्पावरमेंट। सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ कदम नी जॉइंट Pathways to Access Part 3 and Braille Book Portal. Who is an awardee, Aitha Mallikarjun of Delhi, who is an entrepreneur and contributing towards Atmanirbhar Bharat, spoke to Akashwani News.
Idea Bharat ka pehle ek aisa incubation ecosystem hai jo divyangjanon ko udyami banate hai. Udyamita aur swarojgar ke kshetra mein mananiya Pradhan Mantri ji ka ahvan se Atmanirbhar Bharat banane ka divyangjan bhi aage aaye hai aur idea ke madhyam se humne kaam kiya hai. Vigat 4 varshon mein 1200 se zyada divyang udyami 10 rajyon mein 50 districts mein bane hai. Pichle saal ye 500 divyang udyami 60 crore ka ek business bhi kiya hai jisme 33% mahilaye hai.
We spoke to Pratik Khandelwal from Bengaluru, who is a social entrepreneur working for accessibility for Divyangjans.
Aaj mujhe Sarvashreshth Divyangjan Best Role Model ki category mein Rashtrapati ma'am se award mila hai. Is award se khushi bhi hoti hai aur ek hamara commitment jo hai India ko accessible banane ka wo strong hota hai.
Speaking to Akashwani News, Danish Mahajan from Punjab spoke about Radio Udaan, which is an online community radio station for visually impaired.
Hum alag alag इंफॉर्मेशन जो डिसेबल से रिलेटेड है, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम हो, वो सब रन करते हैं. डिसेबिलिटी राइट्स पे चर्चा करते हैं और जितने भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि डिसेबल लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें. हम पिछले 11 सालों से ये जो रेडियो है अपनी पॉकेट से चला रहे हैं.
विद जेसी वर्मा एंड पल्लवी परमार, अनुपम मिश्र फॉर परिक्रमा, दिल्ली.
Yes, and on the occasion of International Day of Persons with Disabilities, the Ministry of Culture organized the third edition of Srijan, an art and craft workshop for Divyang children in New Delhi today. The event was organized in collaboration with Special Olympics, Bharat and the National Gallery of Modern Art. Various activities and workshops have been organized for Divyangs to showcase their talent and skills during the day.
This day serves as a reminder of the global commitment to foster inclusivity, advocating for the rights of specially abled, and creating equitable opportunities for all. The theme for this year is Amplifying the Leadership of Persons with Disability for an Inclusive and Sustainable Future. In the workshop, children beautifully showcase their skills on the canvas. Speaking exclusively to Akashvani, Chairman of Special Olympic Bharat, Uttar Pradesh, said the children were trained by 10 mentors to showcase their art in the workshop.
हमारे 10 mentor artists थे यहाँ पर, जिन्होंने उनको training दी. एक बच्चे ने बड़ी अच्छी disability के ऊपर artwork बनाया जिसको सबने बड़ा appreciate किया. इसमें चार बच्चे थे, चारों को अलग-अलग प्रकार की disability है इस photo में. लेकिन चारों एक दूसरे का सहारा बनके एक पूरा एक मुट्ठी की तरह सबकी मदद कर सकते थे, वो सारे काम वो कर पा रहे हैं, इसको दिखाने का प्रयास किया.
A participant named Ahida Sarmai from Himachal Pradesh also expressed happiness over attending the workshop.
मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं. मैं आर्टिस्ट भी हूँ. मैंने यहाँ पे पेंटिंग फोटोज क्लिक कराए, फिर यहाँ पे एग्जीबिशन भी कराए मैंने. मैंने यहाँ पे पेंटिंग सीखी है, मैं बना रही फ्लावर्स.
Another participant named Bilal, who hails from Delhi, talked about the activities he participated in the workshop.
यहाँ पे मैंने drawing बनाई है, वहाँ पर मैंने बनाया flag बनाया है और सूरज बनाया है, पहाड़ ऐसे बनाए हुए हैं. Drawing बहुत बढ़िया मैंने बनाई है और मुझे आके भी यहाँ बहुत अच्छा लगा. इससे पहले भी मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ.
The government has made significant strides in promoting the rights and inclusion of Divyangjan through various policies and campaigns. For Parikrama, Aman Yadav.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ है विशेष. तो इस कड़ी में सबसे पहले चलते हैं मुंबई. अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग बच्चों के अंदर क्रीड़ा कौशल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंबई के अली यावर जंग स्थान ने अनोखे क्रीड़ा मेले का आयोजन किया है. अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अंकिता के पास.
विविध क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्यांग बच्चे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए खड़े उनके माता पिता, शिक्षक गण और मित्र परिवार, और इस उत्साहपूर्ण माहौल को और भी सुंदर करती हुई रंग बिरंगी सजावट. ये चित्र था मुंबई के अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान के प्रांगण का. अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान ने दिव्यांग बच्चों के लिए क्रीड़ा मेला आयोजित किया था. इस पहल के बारे में संस्था के संचालक डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा,
स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिससे आपके ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है. तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पे हमने स्पोर्ट्स इसलिए आयोजन किया कि उनका जो रूटीन है, रूटीन एक बदल जाए. दूसरा है कि स्पोर्ट्स में सबके साथ मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको देखने का मिलता है. प्लस स्पोर्ट्स ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम अपने आप को दूसरे के साथ जोड़ते हैं.
समावेशी वॉकेथॉन, भारतीय सांकेतिक भाषा में नुक्कड़ नाटक, साथ ही मनोरंजक और आकर्षक खेलों के द्वारा दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास और क्रीड़ा कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया ये क्रीड़ा मेला न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी एक अत्यधिक उत्साहवर्धक अनुभव है. परिक्रमा के लिए अंकिता आप्टे, मुंबई.
Rinchen, your doll, a para athlete from both Kharbu, Kargil, in the Union Territory of Ladakh, has created history by winning the bronze medal at the first World Para Pumse Taekwondo Championships, competing in the senior female category against 140 athletes from 23 countries. Rinchen's exceptional performance has brought immense pride to Ladakh and India. Let's hear more from a correspondent, Anayat Ali.
Deputy Commissioner Kargil Shrikant Suse hosted a special facilitation ceremony to honor Rinchen Udol, the first athlete from Ladakh to secure a bronze medal at the first World Para Pumse Taekwondo Championship held in Bahrain. Recognizing her incredible achievement, DC Kargil presented Rinchen with traditional khataks and a memento and announced a cash award of ₹50,000. He assured all possible support for her training and preparation for the upcoming Asian Championship. Joint Director of the Youth Service and Sports UT Ladakh, Tahir Hussain Zubdavi, also joined the celebration, facilitating Rinchen with khataks and a memento. He reiterated the department's commitment to providing the necessary resources and support for her future endeavors. endeavors at his office. Rinchen's remarkable journey is an inspiration to aspiring athletes across Ladakh, showcasing the potential to achieve excellence on the global stage. Her historic win not only brings pride to Ladakh but also positions the region as a rising hub of sporting talent, particularly in Taekwondo. For Parikrama, this is Anjali from Kargil Union Territory of Ladakh.
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को. उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था. खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे. वे श्री अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे.
खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया. शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे इसलिए ये विचार बदल दिया गया. इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला.
पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के बैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया.
13 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई. जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया. खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा, लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं. खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई. हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं.
आज जयंती है भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था.
जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को और आज़ादी के अख्तियारों को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली.
प्यार से राजन बाबू कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित गणतंत्र के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने देश और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी.
चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई. जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. उन्होंने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया.
जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए.
हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया. हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो. हम आशा करते हैं हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे.
26 जनवरी 1950 को वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए. 12 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में सेवानिवृत्त हुए. उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. इस महान राष्ट्रीय नेता को हमारा नमन.
आज हम रमा देवी चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के एक समाज सुधारक थीं। वर्ष 1921 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था जब वो गांधी जी और कस्तूरबा जी से मिली। वे अपने परिवार के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयी। 8 नवंबर 1930 को बालेश्वर और जगत सिंहपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया।
रमा देवी ने पुनर्निर्माण के लिए रामचंद्रपुर में सेवाघर की स्थापना की। गांधी जी ने आशीर्वाद देते हुए 20 मई 1934 को आश्रम का उद्घाटन किया। रमा देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार फिर 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद रमा देवी ने खुद को पूरी तरह से आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया।
22 जुलाई 1985 को रमा देवी ने अंतिम सांस ली।
And now on to some sports news.
ओमान के मस्कत में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। फाइनल मुकाबला कल होगा। वहीं भारत के पवन कंपेली ने कल थाईलैंड के बैंकॉक में 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है।
इन बिजनेस न्यूज टुडे, डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस टुडे एक्सटेंडेड गेन्स फॉर द थर्ड स्ट्रेट सेशन ड्रिवन बाय रैली इन हैवीवेट स्टॉक्स। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स सर्ज 598 पॉइंट्स or 0.74% to close at 80,846, and the NSE Nifty 50 advanced 181 points or 0.75% to settle at 24,457. In the global crude market, Brent crude was trading 1.04% up at $72.58 per barrel, and WTI crude gained 1.09% to trade at $68.84 per barrel when reports last came in.
और कार्यक्रम में समय हो चला है महान व्यक्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले श्रोताओं आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है मेजर ध्यानचंद की। वे जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उनकी गिनती श्रेष्ठतम कालजयी खिलाड़ियों में से होती है। मानना होगा कि हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकप्रियता का जो कीर्तिमान स्थापित किया उसके आसपास आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा है। हॉकी में ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी ना तो कोई हुआ और ना ही होगा। और कहते हैं कि जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही नेक दिल इंसान भी थे, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है।
रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, बॉर्न रॉबर्ट लुइस बालफोर स्टीवेंसन, पास्ड ऑन दिस डे इन 1894, ही वाज अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पोएट एंड ट्रैवल राइटर। ही इज बेस्ट नोन फॉर वर्क सच एज ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, किडनैप्ड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। एंड ऑल्सो निखिल, आई थिंक देव आनंद वाज बॉर्न टुडे।
जी हाँ बिल्कुल, आज देव साहब की पुण्यतिथि है जिन्हें हम सभी देव आनंद के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था और भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध अभिनेता थे। जीवन भर सक्रिय और चर्चित रहे एक अभिनेता के साथ साथ जाने माने निर्माता और निर्देशक भी थे और बॉलीवुड में उन्हें देव साहब के नाम से ही जाना जाता है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया एक गाना।
है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
Yes, and Dev Anand's 1965 film Guide marked a major milestone in Anand's career. Based on the novel by R.K. Narayan, it became a box office success and was entered for Best Foreign Language Film at the 38th Academy Awards. He reunited with Vijay Anand for the movie Jewel Thief in 1967. Based on the thriller genre, it went on to become a hit at the box office. In the 1970s, he forayed into direction with espionage drama Prem Pujari. Let's listen into a dialogue from one of his movies.
इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाचाश किया है, और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए है फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। कानून की तारीख गवाह है कि खून मुजरिम के सर चढ़ के बोलता है। इसी कानून और इसी इंसाफ की पकड़ आज आपकी गर्दन पर है चंचल देवी।
दोस्तों आज पुण्यतिथि है लांस नायक अल्बर्ट एक्का की। वे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे और रांची यानी कि झारखंड के निवासी थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए वे शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
Yes, and Konkana Sen Sharma was born on this day 1977. She is an actress and filmmaker who works primarily in Bengali and Hindi films. She has received several awards including 2 National Film Awards and 3 Filmfare Awards. The daughter of filmmaker and actress Aparna Sen, she is primarily known for her work in independent films in addition to working in mainstream films. Let's listen in to a dialogue from one of her movies.
Hal chal, hal chal, zara shor hua, 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 zara sh
says that was not a dialogue from one of Konkana Sen Sharma's movies, but rather a song.
और श्रोताओं चलते चलते आपको बता दें कि आज जन्मदिन है मिताली राज का. वे जाने मानी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान रही हैं. इसी के साथ इनमें अनुमति दीजिए निखिल और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की.
नमस्कार
नमस्कार.